पूर्व की दो कारिकाओं में आपने व्याकरण के जो पदार्थ हैं या व्याकरण के जो प्रमेय हैं या कह लीजिए व्याकरण के जो प्रतिपाद्य हैं, प्रतिपाद्य कहते हैं जिसका प्रतिपादन किया जाए, जिसके बारे में बताया जाए, तो प्रतिपाद्य, प्रमेय, पदार्थ, ये तीनों पर्यायवाची हैं। तो व्याकरण शास्त्र के कितने प्रतिपाद्य हैं या कितने प्रमेय हैं या कितने पदार्थ हैं, तो आपको लिखना होगा कि आठ हैं। और वो आठ में जो तरीका ये है कि शब्द, अर्थ, संबंध और प्रयोजन, प्रयोजन को फल भी बोलते हैं, तो शब्द, अर्थ, संबंध और फल, ये चार जो है ना दो दो प्रकार के होते हैं और इस तरह से आठ हो जाते हैं। तो शब्द में आपने देखा एक होता है अनुवाख्येय शब्द, दूसरा होता है बोधक शब्द या प्रतिपादक शब्द, अर्थ में एक होता है अपोद्धार पदार्थ जिसको आप प्रत्यर्थ प्रत्यार्थ कहते हैं, और एक होता है स्थित लक्षण अर्थ। स्थित लक्षण अर्थ में हो गया पदार्थ और वाक्यार्थ। इसी तरह से संबंध भी दो प्रकार का है, कार्य कारण भाव संबंध और योग्यता संबंध, और फल प्रयोजन जो है वह भी दो प्रकार का है, धर्म और ज्ञान बोध। तो इस तरह से ये आठ जो हैं व्याकरण शास्त्र के प्रतिपाद्य हैं। इतनी बात को पढ़ चुके हैं आप। आज 26वीं कारिका में है, ते लिंगैश्च स्वशब्दैश्च शास्त्रेस्मिन् उपदर्शिताः स्मृत्यर्थम् अनुगम्यन्ते केचिदेव यथागमम्। ते माने ते अष्टौ पदार्थाः अथवा ते अष्टौ प्रतिपाद्याः, वे जो आठों हैं प्रतिपाद्य वे इस व्याकरण शास्त्र में लिंगैश्च स्वशब्दैश्च, लिंग के द्वारा और स्वशब्द के द्वारा। तो लिंग के द्वारा, यहाँ पर लिंग शब्द जो है उसका अर्थ, लिंग का अर्थ तो होता है प्रमापक, प्रमापित करने वाला, प्रमाणित करने वाला कि ये है, लेकिन यहाँ पर लिंग का अर्थ जो है ना प्रत्यय, आदेश आदि जो की जो विधि होती है, विधान होता है व्याकरण में, उसको लेना है। तो लिंग माने प्रकृति प्रत्ययादेश आदि विधि, ये अर्थ है लिंग का, प्रत्यय आदेश आदि विधि, आदि से ना विकरण ले लेंगे और भी व्याकरण की जो प्रक्रियाएं हैं उसको लेंगे। तो जिस जिस चीज़ का विधान किया जाता है ना व्याकरण में, वो सब इसके अर्थ में आएगा, लिंग शब्द के अर्थ में। इसलिए हमने आदि लगा दिया कि प्रत्यय आदेश आदि विधि, ये अर्थ है लिंग शब्द का। और स्वशब्दैश्च, स्वशब्द का मतलब यहाँ पर है साक्षात बोधक शब्देह, स्वशब्देह का अर्थ है। तो साक्षात साक्षात बोधक शब्द के द्वारा अथवा प्रत्यय आदेश आदि विधि के द्वारा ये जो पदार्थ हैं वे व्याकरण शास्त्र में, शास्त्रे अस्मिन् उपदर्शिता, इस व्याकरण शास्त्र में उपदर्शित किए गए हैं, बताए गए हैं। क्यों बताए गए हैं तो आगे लिखते हैं, स्मृत्यर्थम अनुगम्यन्ते। स्मृत्यर्थ, स्मृति कहते हैं स्मरण के, स्मरण, तो स्मरणार्थ जो है इस व्याकरण शास्त्र में अनुगम्यन्ते, उसका अनुगम किया जाता है, उसका ज्ञान कराया जाता है। तो किस स्मरण करने के लिए, किसका स्मरण करने के लिए, तो साधु पद का स्मरण और साधु पदार्थ का स्मरण। तो साधु पद पदार्थ का स्मरण करने के लिए ये अर्थ हुआ स्मृत्यर्थम का। तो साधु पद पदार्थ का स्मरण करने के लिए अनुगम्यन्ते माने बोध्यन्ते, माने यहाँ पर बोध कराया जाता है व्याकरण शास्त्र में। केचित एव, ऐसा है, केचित एव माने कुछ ही, ऐसा है कि शब्द जो है वह तो अनंत है और शब्द का अर्थ भी जो है वह अनंत है, तो सारे शब्दों का, सारे अर्थों का अनुगमन जो है, प्रतिपादन जो है, ये तो असंभव है करना। इसीलिए कहते हैं कि केचित एव, कुछ ही जो है ना बताया गया, जैसे आप यन संधि के उदाहरण में चार ही उदाहरण बताए गए, शुद्ध्युपास्य मध्वरी ही, धातृंश लाकृति ही, तो चार ही यनसंज के उदाहरण बताए गए। इसका मतलब ये थोड़े होता है कि चार ही प्रयोग में यन होता है, यन तो अनंत शब्दों में होता है, अनंत स्थल पर होता है, लेकिन यहाँ उदाहरण के तौर पर चार ही बताए गए। तो इसी तरह से व्याकरण शास्त्र में जितनी भी विधियाँ हैं, जितनी भी बातें हैं, वो सब की सब स्मृत्यर्थ है। स्मृत्यर्थ है माने पद के ज्ञान कराने के लिए और पदार्थ के ज्ञान कराने के लिए। ज्ञान माने स्मरण, दोनों एक ही है। यहाँ पर पदस्मरण या पदार्थ स्मरण कह लीजिए या पद ज्ञान पदार्थ ज्ञान कह लीजिए, उसके लिए कुछ ही शब्दों का इस व्याकरण शास्त्र में जो है अनुगमन किया गया है, प्रतिपादन किया गया है। यथा आगमम, यथा आगमम में अव्ययी भाव समास है। यथा आगम मतलब आगम के अनुरूप, जैसा आगम है उस तरह से आगम के अनुसार जो है इस व्याकरण शास्त्र में ये लिंग के द्वारा और स्व शब्द के द्वारा पदार्थ का प्रतिपादन किया गया है और पद का प्रतिपादन किया गया है। अब यहाँ पर आपने पहला शब्द सुना आगम शब्द, इस आगम को थोड़ा समझ लीजिए। आगम का मतलब ऐसे तो वेद होता है, लेकिन यहाँ पर आगम जो है इसका अर्थ करना है कि शिष्ट आचार्य परंपरा। तो शिष्ट आचार्य परंपरा से जो है, परंपरा के आधार पर ही जो है इस व्याकरण शास्त्र में लिंग के द्वारा और स्व शब्द के द्वारा केचिदेव अनुगम्यन्ते, कुछ ही शब्दों का कुछ ही अर्थों का जो है इसमें अनुगमन कराया गया है। तो आगम का मैंने क्या अर्थ बताया यहाँ पर, शिष्ट आचार्य परंपरा, ठीक है। अब 27वीं कारिका में देखते हैं कि शिष्टेभ्य आगमात सिद्धा साधवो धर्म साधनम अर्थ प्रत्ययनाभेदे विपरीतास्त्व साधव। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि साधु शब्द और असाधु शब्द दोनों में आपने बताया कि संबंधा साधु साधुसु, साधु शब्द और साधु और असाधु शब्द दोनों ही शब्दों में कार्य कारण भाव संबंध रहता है और योग्यता संबंध रहता है, ये आपने पहले बताया हुआ है। और वहीं पर आपने बताया कि साधु शब्द के प्रयोग से दो काम होते हैं और असाधु शब्द के प्रयोग से एक काम होता है। क्या? तो साधु शब्द के प्रयोग करने से धर्म भी मिलता है और बोध भी होता है, अर्थ बोध भी होता है, किंतु असाधु शब्द के प्रयोग से केवल अर्थ का बोध होता है, उसमें धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ ये शंका की जाती है कि ऐसा क्यों है, जब दोनों संबंध जो है साधु शब्द में भी होते हैं असाधु शब्द में भी होते हैं, तो परिणाम में अंतर क्यों आ जाता है, क्यों साधु शब्द से दो फल की सिद्धि होती है और असाधु शब्द से केवल एक फल की ही सिद्धि क्यों होती है, उस क्यों का उत्तर जो है इस कारिका में बताया गया है। इसमें मुख्य बात यह है कि साधु शब्द जो होता है वह आगम प्रमाण से सिद्ध होता है और असाधु शब्द जो है आगम प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है। आगम प्रमाण से सिद्ध होने का मतलब जो मैंने बताया आगम का अर्थ कि शिष्ट आचार्य परंपरा, वो अर्थ तो है ही, और अगर आगम में प्रमाण जोड़ देंगे ना तो आगम प्रमाण का अर्थ हो जाएगा शब्द प्रमाण। आगम प्रमाण का मतलब क्या होगा, शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण के द्वारा साधु शब्द सिद्ध हैं और असाधु शब्द जो है आगम प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं होता है, और यही कारण है फल भेद में। तो साधु शब्द जो है आगम प्रमाण से सिद्ध है, इसलिए उसमें दोनों फलों की प्राप्ति होती है, धर्म की भी प्राप्ति होती है और अर्थबोध भी होता है। और असाधु शब्द जो है वो आगम प्रमाण से सिद्ध नहीं है, माने शब्द प्रमाण से सिद्ध नहीं है, इसलिए उसमें एक ही फल की प्राप्ति होती है, केवल अर्थबोध होता है। इसी बात को आपकी कारिका में बताया गया, शिष्टेभ्य आगमात सिद्धा, माने शिष्टों के द्वारा आया हुआ जो आगम प्रमाण है उसके द्वारा सिद्धा साधव, साधु शब्द जो है वो सिद्धा, साधु शब्द सिद्ध है माने प्रमाण से सिद्ध है, इसलिए धर्म साधनम, इसलिए साधु शब्द जो होता है वह धर्म का साधन होता है। अर्थ प्रत्यायन अभेदे, अर्थ प्रत्यायन मतलब अर्थबोध, तो अर्थबोध में यद्यपि अभेद है, भेद माने विशेष और अभेद माने अविशेष, माने साधु शब्द से भी अर्थ प्रत्यायन होता है, अर्थबोध होता है, और असाधु शब्द से भी अर्थ प्रत्यायन होता है, दोनों में भेद नहीं है, अभेद है, किंतु विपरीतास्तु असाधवः, असाधु शब्द जो होता है वह साधु शब्द के विपरीत होता है। कैसे विपरीत होता है? क्योंकि साधु शब्द जो है वह धर्म का साधन है, और असाधु शब्द जो है वह धर्म का साधन नहीं है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साधु शब्द जो है शिष्टों के द्वारा प्राप्त जो आगम प्रमाण है उसके द्वारा सिद्ध है, इसीलिए दोनों के फल में अंतर आता है, दोनों के फल में भेद होता है। अब 28वीं कारिका में ये है कि नित्यत्वे कृतकत्वे वा तेषाम आदिर्न विद्यते प्राणिनामिव साचेषा व्यवस्था नित्यतोच्यते। यहाँ पहले आप जान लीजिए कि व्याकरण दर्शन में शब्द को नित्य माना गया है, और मीमांसा दर्शन में भी जो है ना शब्द को नित्य माना गया है, लेकिन न्याय दर्शन में शब्द को अनित्य माना गया है। ठीक है, ये तो समझ में आया, व्याकरण और मीमांसा इन दोनों दर्शनों में शब्द को नित्य माना और न्याय दर्शन में शब्द को अनित्य माना। नित्य मान लेंगे तो क्या होगा, शब्द जो है वो अनादि हो जाएगा, और नित्य मानेंगे और अनित्य मानेंगे तो शब्द क्या होगा, शब्द की उत्पत्ति होगी, फिर शब्द का विनाश होगा, ये सब होगा। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि अगर शब्द नित्य है तब तो चलिए साधुत्व व्यवस्था बन जाएगी कि अयम शब्द साधु हो, अयम शब्द असाधु, क्योंकि शब्द नित्य है तो उसमें कुछ चेंज तो होना ही नहीं है। तो जब कुछ चेंज नहीं होगा तो कहा आराम से कहा जा सकता है, आसानी से कहा जा सकता है कि यह शब्द साधु है और यह शब्द असाधु है। किंतु यदि शब्द को अनित्य मानेंगे तो क्या होगा कि शब्द तो हमेशा प्रतिक्षण बदलने वाला हो जाएगा, अभी कुछ शब्द है, कुछ क्षण के बाद कुछ और शब्द हो जाएगा, फिर कुछ क्षण के बाद और शब्द हो जाएगा, हमेशा शब्द में परिवर्तन होता ही रहेगा। तो व्याकरण कैसे निर्धारित कर पाएगा कि ये शब्द जो है साधु है और ये शब्द जो है असाधु है, ये व्याकरण कैसे करेगा? तो नित्य पक्ष में तो ठीक है, व्याकरण जो है शब्द साधुत्व व्यवस्था कर देगा कि अयम शब्द साधु, अयम शब्द असाधु, किंतु अनित्य पक्ष में कैसे साधुत्व की व्यवस्था व्याकरण शास्त्र करेगा, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर जो है 28वीं कारिका में दिया कि नित्यत्वे कृतकत्वे वा तेषाम आदिर न विद्यते। नित्यत्वे माने नित्यत्व पक्षे, शब्द को जब हम नित्य मानते हैं तो, और कृतकत्वे, कृतकत्वे माने अनित्यत्वे, कि शब्द को नित्य मानने पर अथवा शब्द को कृतक मानने पर, अनित्य मानने पर, तेषाम शब्दानाम आदि न विद्यते, उन शब्दों का कभी भी आदि नहीं होता। अनित्य होगा तो भी जो है ना शब्द अनादि ही रहेगा, और नित्य होगा, नित्य पक्ष रहेगा तो भी शब्द अनादि ही रहेगा। ताकि ये कैसे होगा, अनित्य में अनादि कैसे होगा, तो आगे बताते हैं, प्राणिनाम इव साच ऐसा व्यवस्था नित्य तोचते, ताकि जैसे प्राणियों में है, हजारों साल पहले भी प्राणी हुआ करते थे और आज भी जो है ना प्राणी हैं, और हजारों साल आगे भी जो है ना प्राणी रहेंगे, तो जैसे प्राणियों में व्यवस्था नित्यता होती है, क्या होती है प्राणियों में व्यवस्था नित्यता, ये व्यवस्था नित्यता क्या है इसको मैं बाद में बताऊंगा। तो प्राणियों में जिस तरह से व्यवस्था नित्यता होती है, उसी तरह से अनित्य शब्द मानने पर भी शब्द में ये व्यवस्था नित्यता हो जाएगी, व्यवस्था नित्यता रहेगी, इसीलिए उसमें आदि का व्यवहार नहीं होगा, उसमें अनादि का ही व्यवहार होगा। और जब शब्द अनादि होगा, उत्पत्ति से रहित होगा, तो फिर जो है ना साधुत्व व्यवस्था जो है आसानी से बन जाएगी। अब जो मैंने ये कहा था कि व्यवस्था नित्यता क्या होती है उसको बताऊंगा, तो उसको समझ लीजिए। ऐसा है कि जैसा कि मैंने बताया कि पहले भी प्राणी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, तो इसमें आप ये बता सकते हैं क्या कि अयम प्राणी आदि, यह जो है आदि प्राणी है ऐसा आप कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि जिसको आप आदि प्राणी, जैसे मान लीजिए आप पिता को कहेंगे कि ये आदि प्राणी है तो नहीं कह सकते, क्योंकि पिता के भी पिता हुए थे। और पितामह को भी आप आदि नहीं कह सकते, क्योंकि पितामह के भी पिता हुए थे, प्रपितामह हुए थे। प्रपितामह को भी आदि नहीं कह सकते, क्योंकि प्रपितामह के भी पिता थे, वृद्ध प्रपितामह वो थे। तो इस तरह से किसी को भी ये नहीं कहा जा सकता प्राणियों में कि अयम प्राणी आदि ही। और जब ये नहीं कहा जा सकता, जब आपको आदि का पता नहीं है कि कौन आदि प्राणी है, तो वहाँ पर आपको उस प्राणी को नित्य ही मानना पड़ेगा। और इस तरह से जो नित्य माना जाता है उसी का नाम है व्यवस्था नित्यता। इसी तरह से शब्द में ये नहीं कहा जा सकता कि अयम घट शब्द आदि ही, यह जो घट शब्द है यह आदि शब्द है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जब जिस घट शब्द को कहेंगे कि अयम आदि घट शब्द है, उससे पहले भी किसी ने घट शब्द का प्रयोग किया होगा, उससे पहले भी किसी ने घट शब्द का प्रयोग किया होगा। तो जैसे प्राणी में आप ये नहीं कह सकते कि यह आदि प्राणी है, इसी तरह से घट में भी नहीं कह, घट शब्द में भी नहीं कह सकते कि ये घट शब्द जो है आदि शब्द है। और जब आदि का निर्धारण नहीं होगा तो क्या होगा, अनादि ही माना जाएगा ना। तो आदि के निर्धारण नहीं होने से जो अनादि माना जाता है, उसी अनादि मानने को हम व्यवस्था नित्यता कहते हैं। इसके लिए एक और शब्द है बढ़िया शब्द, प्रवाह नित्यता। व्यवस्था नित्यता, प्रवाह नित्यता और व्यवहार नित्यता, ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। क्या क्या? व्यवस्था नित्यता, प्रवाह नित्यता और व्यवहार नित्यता। जैसे हजारों साल पहले भी व्यवहार होते थे, आज भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे, तो इसमें ये नहीं कह सकते कि अयम व्यवहार आदि ही, नहीं कह सकते। तो जब आदि का व्यवहार नहीं होगा तो क्या होगा, व्यवहार को अनादि मानना पड़ेगा, और अनादि मान लेंगे तो वो नित्य हो जाएगा ना। तो यही है व्यवहार नित्यता। ऐसे ही प्रवाह नित्यता होती है। अब गंगा नदी का प्रवाह बह रहा है ना, तो आप कहते हैं कि अयम गंगाया प्रवाह, ये बात आप भी कह रहे हैं, आपके बच्चे भी जो है ना बोलेंगे कि ये गंगा का प्रवाह है, और हमारे पिताजी ने भी बोला होगा किसी को कि ये गंगा का की धारा है। अब जबकि वो प्रवाह जो है हर समय बनती है और बिगड़ती है, जो इस समय में प्रवाह यहाँ पर है इस जगह पर, वो जल जो है ना थोड़ी ही दूर पर जा करके वो बदल जाता है, फिर वो वहाँ चला जाता है और इस जगह पर कोई दूसरा जल आ जाता है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि अयम गंगाया प्रवाह। तो वहाँ पर भी उसको, तो उस प्रवाह को ये कोई नहीं कह सकता कि अयम प्रवाह आदि ही, ऐसा नहीं कह सकता। नहीं कहेगा तो उसको अनादि प्रवाह मानना पड़ेगा, और अनादि प्रवाह मान लेंगे तो वही प्रवाह नित्यता हो जाएगी। इस तरह से आज का पाठ यहीं खत्म करते हैं।